السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين. وہ جس کا انتظار تھا وہ گھڑیاں آ پہنچی. الحمد للہ ہم داخل ہو چکے ہیں اس عشرے میں جس کے لیے ہم دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا لیلت القدر. اور بہت زیادہ ممکن ہے کہ آج کی رات لیلت القدر ہو، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آڈ نائٹ اور جمعے کی رات ایک ساتھ آ جائیں تو بہت زیادہ یہ چانس ہے کہ وہی لیلت القدر ہو. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم ہر رات کو یہ سمجھیں گے کہ یہی لیلت القدر ہے. اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اور آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم جاگے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس امید پہ جاگ کے بیٹھے ہیں، اپنے بستر چھوڑ کے بیٹھے ہیں کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، اور اس امید میں بیٹھے ہیں کہ آج کی رات ہی لیلت القدر ہو تو ہزار مہینوں سے بھی زیادہ کی عبادت کا ہمیں اجر مل جائے. اور یہی وہ رات ہو کہ جس میں ہماری تقدیر بدل جائے، اور یہی وہ رات ہو جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے. اور کوئی بعید نہیں، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہی لیلت القدر ہو، اور ہم نے ایسے ہی سوچنا ہے کہ یہ ساری راتیں ہی لیلت القدر ہیں. اسی لیے اس کے لیے ہمیں کمر کس لینی ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیا کرتے تھے، یعنی عبادت میں پوری کوشش کرتے تھے، اور اپنی بیویوں سے بالکل الگ ہو جاتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ وہ بھی خیر کے اس وقت میں فائدہ اٹھا لیں. تو سبحان اللہ، وہ وقت ہمیں مل گیا. ہماری ایک بہن ہماری مسجد سے تعلق رکھتی تھی، جن کے 2 دن پہلے ہی تراوی سے آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلی گئی. وہ میں بھی ہو سکتی تھی، وہ آپ بھی ہو سکتے تھے. انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ آخری عشرہ آ رہا ہے اور اس میں عبادت کریں گے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ اس تک پہنچ بھی سکے گا یا نہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ رمضان شروع کیا، لیکن رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہی چلے گئے. اور آپ بھی یقیناً بہت سارے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو اس عشرے تک پہنچنے سے پہلے دنیا سے ہی چلے گئے. تو آپ شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا؟ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نصیب کر دے عشرہ، اور اس میں توفیق دے دے کہ ہم جاگیں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور وہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے. سب سے آسان اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، کسی کو بھی منانا بہت مشکل ہے. انسانوں کو منانے کے لیے جائیں نا تو بہت ساری باتیں آپ کو سنائیں گے، بہت سارے تانے بھی دیں گے، بہت پچھلی باتیں یاد بھی کرائیں گے، اور پھر بھی موڈ بنا کے بڑی بددلی کے ساتھ معاف کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اللہم انک عفو، جو بخشنے والا ہے، اس کا نام ہے العفو، बहुत ज्यादा बख्शिश करने वाला। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ्व, अल्लाह तुझे मोहब्बत है माफ करने से, यानी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है माफ करना। इस बात पे जरा रुक के सोचिए, कौन है इस दुनिया में ऐसा जिसको माफ करना बहुत पसंद हो, जिसको ये चीज पसंद आती हो कि मैं दरगुजर कर दूं, जाने दूं, मैं मलामत ना करूं, मैं फॉरगिव कर दूं, और ऐसा फॉरगिव करूं कि कभी याद ही ना रहे, इरेज कर दूं। ऐसा कौन हो सकता है? हम तो माफ करके भी बाद में ताने देते रहते हैं, और फिर भी ये कहते रहते हैं कि माफ तो कर दिया लेकिन दिल से बात नहीं गई। अल्लाह ताला ऐसा नहीं, वो इरेज कर देता है, और उसको पसंद है ये। कौन है जिसके अंदर ये सिफत हो सकती है कि उसको माफ करना पसंद हो? इस दुआ के ऊपर और गौर व फिक्र करेंगे, मगर आज जो अहम चीज मैं आपके साथ करना चाहती हूं वो ये कि आप इस वक्त बैठे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि लैलतुल कदर में आपकी बख्शिश हो जाए, तो आप उन चार कामों में से कहीं किसी काम में मुलव्विस तो नहीं जिनके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बंदे की बख्शिश लैलतुल कदर में भी नहीं होती? नंबर वन, वो जो शराब का आदी हो। नंबर टू, जो वालदेन का नाफरमान हो। आपने कहीं अपने वालदेन को नाराज तो नहीं किया हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके वालदेन आपसे रूठे में, आपने उनको सताया हुआ है, वो आपसे बदजन है, उनका दिल आपसे खराब है, वो आपकी वजह से तकलीफ में है? अगर ऐसा है तो फौरन उनको मनाने की फिक्र करें, फौरन अभी उनको कॉल करें, क्योंकि ये रातें इतनी कीमती हैं, अगर इन रातों में ही बख्शिश ना हुई तो और कब होगी? इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत उरूज पे होती है, तो उनमें से नहीं होना जो वालदेन के नाफरमान हो। इसी तरह जो कतअ रहमी करने वाला, आपने कहीं किसी से तोड़ा तो नहीं हुआ, किसी बहन भाई के साथ, मामू चचा फूफी खाला के साथ रिश्तों को तोड़ा तो नहीं हुआ, रिश्तों के साथ नाराजगी तो नहीं है, कितना अरसा गुजर चुका है उनके साथ बातचीत नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के लिए ये जायज ही नहीं है कि वह दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा कतअ ताल्लुक करे। अगर 3 दिन हो जाए तो उसे चाहिए कि जाके उसको सलाम करे, बस अगर वो सलाम का जवाब दे देता है तो दोनों अजर में शरीक है, और अगर नहीं देता तो वो गुनाहगार होगा, जबकि सलाम करने वाला कतअ ताल्लुक करने वालों में शामिल नहीं होगा। यानी अगर आपने सलाम कर लिया, दूसरे ने नहीं भी जवाब दिया, लेकिन कम से कम आप बरी जिम्मा हो गए, आप कतअ रहमी करने वाले नहीं है, आप नाता तोड़ने वाले नहीं। अब ये वो जाने और उसका काम। और नंबर फोर, दिल में कीना रखने वाला, बोझ रखने वाला, अगर कोई बोझ है कीने है निकाल दें उनको, इट्स नॉट वर्थ इट कि हम इन रातों में भी बैठ के कीने दिल में भरे पड़े हैं और अल्लाह ताला से माफिया मांगने जा रहे हैं। हम खुद तो किसी को माफ नहीं करते, छोटी छोटी बातों को लेके बैठे हैं, और छोटी छोटी बातों की वजह से दूसरों के साथ बुग्ज रखे में, इल फीलिंग्स हैं हमारे दिल में और हम उनको निकाल ही नहीं पा रहे। तो छोड़ दें उस बुग्ज को, कीनों को, और यही सोचें कि अल्लाह ताला मैं तेरी खातिर माफ करती हूँ, तू मुझे माफ कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करते और इनमें से चारों में से किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो ये ना हो कि हम जागे भी और फिर उसके बाद भी बख्शिश ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज के ऊपर आप तवज्जो दीजिए। कोई चीज दुनिया की इस काबिल नहीं है, कोई दुश्मनी इस काबिल नहीं है कि हम उसकी वजह से अपनी बख्शिश को परे करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस रात की सआदत से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। यानी ये इतनी बासआदत रात है कि जो इससे महरूम रह गया ना, सारी भलाई से महरूम रह गया। ये इतनी बड़ी रात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका हाथ से निकल जाना, चले जाना बहुत बड़ी महरूमी है, बड़ी बदनसीबी है। कितनी बड़ी खैर उस बंदे के हाथ से निकल गई जिसने इस रात में फायदा ना उठाया। ये रात वो है जो इंसान को जीरो पे है ना, तो उसको बुलंद दर्जात तक पहुंचा सकती है एक रात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा बनी इसराइल के आबिदों का, चार आबिदों का जिक्र किया जिन्होंने 80 साल तक अल्लाह ताला की इबादत की थी और एक आंख झपकने के बराबर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। तो सहाबा बड़े हैरान हुए कि ऐसे भी कोई लोग थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन आए और फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने उस जमात की इबादत पे ताज्जुब किया तो अल्लाह ताला ने उससे भी अफजल चीज आप पे नाजिल फरमाई है। और ये अफजल चीज क्या है? ये लैलतुल कदर है। इस रात का नेक अमल, इसका रोजा, इसकी नमाज 1,000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। लिहाजा इसमें हर किस्म की नेकी हमने करनी है। सबसे बढ़ के जो चीज हमने करनी है वो है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे जिक्र फरमाया और उसके ऊपर बशारत दी कि जो ये काम करेगा लैलतुल कदर में, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। और वो क्या है? कयाम करना। कयाम करना इस रात में सबसे ज्यादा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कयाम करें। क्यों? इसलिए कि कयाम के अंदर आप कुरान भी पढ़ रहे हैं, आप चाहे पकड़ के पढ़ लें, आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप तस्बीह भी कर रहे हैं, देखिए रुकू और सुजूद में आपकी तस्बीह हो रही है, तो कुरान की तिलावत भी हो गई, तस्बीह भी हो गई। इसी तरह अल्लाह ताला की बड़ाई भी बयान हो रही है, अल्लाह अकबर कर रहे हैं, फिर रुकू और सुजूद भी हो रहे हैं, अल्लाह ताला के आगे झुक भी रहे, फिर दुआ भी हो रही है, सूरह फातिहा तो है ही दुआ, फिर तशहुद में भी दुआ है, फिर सज्दों में भी दुआ है। इसमें सारी इबादत कंबाइन हो गई। हाँ, जब आप थक जाएं तो फिर आप बैठ के कुरान करीम की वैसे बैठ के तलावत कर लें, आप थक जाएं तो फिर आप जिक्र अजकार कर लें, और जो दुआ है वो तो करते ही रहना है। आप सजदों में भी जाके दुआ कीजिए और सजदों को लंबा कर लीजिए, कयाम को लंबा कीजिए, तेज तेज मत जाइए। हमने इसीलिए नमाज के बारे में सारा इस रमजान में सीखा है कि नमाज में हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका तर्जुमा सीखा है, ताकि हम अपनी नमाजों को खूबसूरत बना सके, खुशू वाली बना सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इन 10 रातों को रोशन किया करते थे। रोशन का मतलब क्या है? कि इनमें बहुत ज्यादा कसरत से इबादत करते थे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में इबादत करते थे और किसी रात में नहीं करते थे, इतनी ज्यादा इन रातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत फरमाया करते थे। और ये रात बड़ी ही मुबारक रात है। इसके बारे में मैं और भी आपको बताती रहूंगी इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में, मगर ये जहन में रखिएगा कि आपके घर में भी कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से फरिश्ते आपके घर ना आएं, क्योंकि इस रात में फरिश्ते उतरते हैं। और अल्लाह ना करे कि हमारे घरों में ऐसी कोई चीज हो जहां जिसकी वजह से फरिश्तों के लिए रुकावट हो, जैसे फरिश्ते उस घर में नहीं आते जहां पे अल्लाह के सिवा किसी की इबादत की जा रही हो, मसलन मंदिर वगैरह, ये आतिशकदे, बुत खाने, इनमें नहीं आते, उन जगहों पे भी नहीं जाते जहां पे गंदी चीजें डाली जाती है, गार्बेज की प्लेसेस, उस घर में भी नहीं आते जहां पे नशे वाला आदमी हो या नशे वाली चीज हो, या जिस घर में कोई बुत गड़ा हुआ हो, या जिस घर में बाजे गाजे घंटियां हो या स्टैचूज हो, वहां ये रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। अब पता है तस्वीरों, जब जहाँ पे घरों में तस्वीरें लगाई जाती हैं दीवारों के ऊपर, वो वे भी उन घरों में भी नहीं फरिश्ते जाते। जहाँ पे कुत्ते अंदर होते हैं वहां पे भी फरिश्ते नहीं जाते। बाकी सारी जमीन पे घूमते हैं, चप्पे चप्पे पे घूमते हैं, सारी रात मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआएं मांगने में गुजार देते हैं। तो इसलिए हमने उनमें से नहीं होना जो इन रातों में कहीं महरूम रह जाए फरिश्तों की आमद से। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि हमारे घर फरिश्ते एंटर ना होना चाहें क्योंकि उनमें कोई ऐसी चीज हो। और कसरत से दुआएं करें, बहुत ज्यादा दुआ करें, बहुत ज्यादा दुआ करें। और खसूसी दुआ तो आप सबको मालूम है, जो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहमतें नाजिल फरमाए, कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया था तो हमें भी ये रहनुमाई मिल गई कि हम क्या दुआ स्पेशली करें। ये नहीं कि आपने इसके अलावा कोई दुआ नहीं करनी, मगर ये दुआ अगर आपकी कबूल हो जाती है ना तो आपको सब कुछ वैसे ही मिल जाना है। और वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्फा फ़ाफ़ु अन्नी। और मेरे मुंह से फ़ाफ़ुअन्नी निकलता ही नहीं है, फ़ाफ़ुअन्ना ही निकलता है। क्यों? इसलिए कि फ़ाफ़ुअन्नी है अल्लाह मुझे माफ कर दे, फ़ाफ़ुअन्ना है अल्लाह हम सबको माफ कर दे। मेरे जहन में सब लोग होते हैं जो मेरे प्यारे, जो मेरे ख्वाह ख्वा, मेरी औलाद, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब, जितने भी मेरे करीबी साथी, सारे माफ वरना अल्लाह ताला हम सबको माफ कर दे। तो आप भी अगर ऐसे मांगना चाहें तो प्लूरल के सीगे में भी मांग सकते हैं, लेकिन इस दुआ की कसरत करें। देखिए उलमा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाह ताला को ये नहीं फरमाया कि ऐ आयशा तुम अल्लाह ताला से जन्नत मांग लो, आयशा तुम अल्लाह ताला से औलाद मांग लो, ऐ आयशा तुम अल्लाह ताला से रिस्क मांग लो या कोई और चीज तलब कर लो। क्यों माफी का ही क्यों का? इसी वजह से उलमा कहते हैं कि अगर बख्शिश हो गई ना तो सब कुछ अल्लाह ताला वैसे ही अता फरमा देगा। क्योंकि देखिए जब हम गुनाह करते हैं ना तो एक्चुअली हम अल्लाह ताला को नाराज कर देते हैं अपने गुनाहों की वजह से, और हमारे गुनाहों की वजह से हम अल्लाह ताला की नजरों से गिर जाते हैं, वो हमसे मुंह फेर लेता है। लेकिन जब हम तौबा करते हैं और उसको मना लेते हैं तो जाहिर है जब अल्लाह ताला की नजरे करम होगी तो रहमत ही रहमत है। उसने तो अपनी रहमत के जर्रा भी अगर हमें दे दिया ना, जर्रा जर्रा तो पूरे जमीन के ऊपर जितने लोग हैं उनको एक जर्रा ही मिला हुआ है, हम सबको जर्रे का भी कोई हिस्सा मिला हुआ है छोटा सा, जिसकी वजह से हमारे अंदर कोई नरमी है, मोहब्बत है किसी के लिए, प्यार है किसी के लिए, तरस है किसी के लिए, खैरख्वाही है किसी के लिए, तो एक जर्रा भी उसकी रहमत का मिल गया ना तो हमारी तो जिंदगी बदल जाएगी। तो उसकी रहमतों का नुजूल होने लगता है, वो खुश हो गया तो सब कुछ मिल गया, फिर क्या रह गया? असल बात तो उसको राजी करना है ना, कि वो खुश हो गया तो जन्नत भी मिल गई, वो खुश हो गया तो जहन्नम से भी आजादी मिल गई, वो खुश हो गया तो दुनिया और आखिरत के सारे मसले हल हो गए। तो असल में इस दुआ में अल्लाह ताला को राजी कर लेना है कि मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। इसलिए नहीं कि मैं डिजर्व करती हूँ माफी, इसलिए कि मैं तो इतने बड़े तो नहीं मैंने गुनाह किए वे, इसलिए तू मुझे माफ ही कर दे ना, नहीं, इसलिए कि अल्लाह तू तो आफूफ है, अल्लाह ताला तू तो माफ करने वाला है, अल्लाह ताला तुझे तो मोहब्बत है माफ करने से, और ये खूबी किसी के पास नहीं है रब, सिर्फ तेरे पास है कि तुझे अच्छा लगता है माफ करना, तुझे पसंद आता है माफ करना, तो है तुझे हब, तुझे मोहब्बत है माफ करने से, फाफवानी इसलिए मुझे माफ कर दे अल्लाह, वरना मैं ये नहीं कहती कि मैं आई आई डिजर्व इट, और मैं ये भी नहीं कहती कि मैंने कौन से इतने बड़े गुनाह कर दिए, और मैं ये भी नहीं कहती कि मैं इस काबिल ही हूं जो माफ करना ही चाहिए, नहीं, लेकिन इसलिए कि तू तो बहुत माफ करने वाला है, तेरी तो सिफत है और तुझे अच्छा भी लगता है। इंसानों में कौन है जिसको अच्छा लगता हो माफ करना, जिसको मोहब्बत हो माफ करने से? कोई एक दफा माफ कर देगा, दो दफा माफ कर देगा, चार दफा, 10 दफा, उसके बाद क्या कहेगा? उसके बाद कहेगा अब नहीं माफ करता। इवन वालदेन जो होते हैं, बाज लोगों से मैं सुनती हूँ वो कहते हैं कि वालदेन इतने नाराज हो गए कि उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें माफी नहीं करेंगे। माँ कहती है दूध नहीं बख्शूंगी, बाप कहता है आग कर दूंगी, हमने तेरी कभी शक्ल ही नहीं देखनी। बस लड़कियां कहती हैं उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, फिर वो कहती हैं कि वो माफ करने को तैयार नहीं, शक्ल देखने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, इतने दिल सख्त कर लेते हैं। और अल्लाह ताला की जनाब में कोई शिर्क भी कर लेता है जो सबसे बड़ा गुनाह है, कभी भी नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद कोई माफी मांग लेता है तो वो तो उस गुनाह को भी माफ कर देता है, और ये नहीं कहता अब तो मैंने माफ करना ही नहीं, और तुम्हारी लिमिट ओवर हो गई। बस तुम्हारे पास 20 चांसेस हैं, 50 चांसेस हैं, 60 चांसेस हैं, तुम्हारी जिंदगी में इतने बस चांसेस हैं, इसके बाद नहीं माफ करूंगा, ऐसी कोई लिमिट नहीं उसने लगाई। जितनी दफा भी उसकी तरफ पलट के आओगे, उतनी दफा ही उसको माफ करने वाला पाओगे। जितनी दफा उसके दरवाजे की तरफ आओगे, उसकी तौबा का दरवाजा खुला ही पाओगे। सुभान अल्लाह, ऐसा कोई हो सकता है? किसी में ये ताकत नहीं, और किसी में ये कुव्वत नहीं, और किसी के अंदर ये खासियत नहीं कि वो ऐसे माफ कर दे कि दोबारा मेंशन भी ना हो, कि उसका असर भी खत्म हो जाए, जैसे बिल्कुल इरेज कर दिया गया। बहुत प्यारी इस दुआ को अपनी जुबान पर जारी रखिए। जितनी भी देर आप इस रात में गुजारते हैं, इस दुआ को आपने नहीं भूलना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी। अल्लाह, तू बड़ा दरगुजर करने वाला है, तू बड़ा मोहब्बत करता है माफ करने को, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला हमारी इस तौबा को कबूल कर ले। वैसे तो हर वक्त दुआ की कसरत करना मुस्तहब है, बड़ा पसंदीदा है, दुआ इबादत है, लेकिन याद रखे रमजान में दुआओं को ज्यादा कर दे, और खास तौर पे आखिरी अशरे में, और वो भी ताक रातों में दुआओं की कसरत कीजिए। कौन सी घड़ी कबूलियत हो जाए हमारी इस दुआ की, तो सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ ही दुआ मांगिए, अल्लाह ताला इस दुआ को हमसे कबूल फरमाए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ये जो हमारे सेशन है कयाम के, ये इसलिए नहीं है कि आप सब इंगेज हो जाएं इसके अंदर और अपनी सारी इबादत छोड़ दें। जो लोग अपनी इंडिविजुअल इबादत कर सकते हैं, वो अपनी इबादत जारी रखें। ये उन लोगों के लिए हैं जो अकेले में होते हैं, तो फिर वो सो जाते हैं, वो जाग नहीं सकते, उनको हेल्प चाहिए होती है, इसके लिए हम ये सेशन करते हैं। लेकिन आप में से वो लोग जो अपनी इंडिविजुअल इबादत कर सकते हैं, मोर देन वेलकम। आप जाएं अपनी इबादत करें, क़याम करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, ये सिर्फ आपको मोटिवेट रखने के लिए और इस चीज़ के लिए कि आप लोग जागे रहें, और मे बी आप सुनते रहेंगे तो शायद आपको हेल्प मिले जागने में। लेकिन प्लीज़ इन रातों को, मेरी रिक्वेस्ट है, मस्जिदों के अंदर गपशप करने में, खाने पीने में, वहाँ के बाज़ारों में, और ईद की शॉपिंग में, और इन चीज़ों में प्लीज़ मत गुजारिएगा। मेले ठेलों में मत गुजारिएगा। मस्जिद जाने का मतलब ये नहीं है कि अब बस मैं कोई जागने का कंपटीशन था जो मैंने विन कर लिया। मस्जिद जाने का मतलब ये है कि या तो आप वहाँ पे बैठ के इबादत करें, वरना बेहतर है कि आप घर आएं और सिक्लूडेड होके अपनी इबादत पे तवज्जो दीजिए। तो मस्जिद को ठप्पा नहीं लग जाता कि आपकी बस लैलतुल कदर आपको मिल गई क्योंकि आप मस्जिद के अंदर घूम फिर रहे थे और मज़ा कर रहे थे और खा पी रहे थे, तो आप बस आपकी लैलतुल कदर हो गई। नहीं, ठीक है, बी वाइज। एक होता है वर्क हार्ड करना और एक होता है वर्क स्मार्ट करना। ठीक है, स्मार्टली वर्क करें इन रातों में, डोंट वेस्ट। ये रातें बहुत कीमती हैं, पता नहीं दोबारा मिले कि नहीं। प्लीज डोंट वेस्ट देम।